नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 100 निकायों में मतदान शांतिपूर्ण जारी। दोपहर 12 बजे तक लगभग 25% मतदान दर्ज किया गया। राज्य में मतदान के लिए मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों की संख्या में पिछले साल नवम्बर के दौरान 14,63,000 की वृद्धि और MDDA के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर देहरादून में किए जा रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का जायजा लिया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सुशील पुरोहित और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 100 निकायों में आज सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शांतिपूर्ण जारी है। दोपहर 12 बजे तक प्रदेश में लगभग 25% मतदान दर्ज किया गया। बागेश्वर जिले में 26.59% और चमोली जिले में औसत 25% मतदान हुआ है। मतदान के लिए राज्य में 1,515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कुल बूथों की संख्या 3,394 है। करीब 30,29,000 मतदाता कुल 5,405 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा और मतगणना 25 जनवरी को होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने निकाय चुनाव में निर्भीक होकर अधिक से अधिक मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि राज्य में निकाय चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के 11 नगर निगमों में मेयर के लिए 72 उम्मीदवार और 89 नगरपालिका नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए 445 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा सभी निगम पालिका पंचायतों में सदस्य और पार्षद पद के लिए कुल 4,888 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अन्य जिलों में मतदान के लिए मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में विजय कॉलोनी बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं उत्तरकाशी में 97 वर्षीय गंधर्व सिंह ने पुरोला नगर पालिका में मतदान किया। हरिद्वार में 14 नगर निकाय के लिए आज सुबह मतदान धीमी गति से शुरू हुआ, लेकिन बाद में इसमें तेजी आने लगी। जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मेंद्र सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र सिंह डोभाल ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदान व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी नागरिकों से अधिक संख्या में वोट डालने की अपील की है।
पूरे जिले में 14 निकायों में इसमें मतदान चल रहा है और सभी 623 बूथों पर बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से मतदान लोग कर रहे हैं और कहीं भी कोई ऐसी विशेष बात उल्लेखनीय बात नहीं आई है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है और सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। लोग ID लेकर के आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। मेरा लोगों से आपके माध्यम से अनुरोध है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ, अपने वोट डालें, मतदान करें, इससे लोकतंत्र हमारा मजबूत होता है। यह भी अनुरोध है कि मोबाइल घर पर छोड़ के आएँ, ID जरूर साथ लेके आएँ।
उधर नगरपालिका पौड़ी में चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सभी आयु वर्ग के मतदाता सुबह से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। पौड़ी के CO अनुज कुमार ने बताया कि मतदान के दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं।
पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया जा रहा है। जितने भी जोनल अधिकारी हैं, हमारे सेक्टर पुलिस अधिकारी हैं और प्रत्येक बूथ पर जितने भी ड्यूटीज हैं उन सबको चेक करके और ब्रीफ भी किया जा रहा है और समय समय पर निरीक्षण भी किया जा रहा है। अभी तक सब सामान्य है और शांतिपूर्वक मतदान प्रक्रिया चल रही है।
बागेश्वर जिले में 1 नगर पालिका और 2 नगर पंचायतों में निकाय चुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। मतदान को लेकर युवा मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
हमारी हमेशा ही मदद करते हैं, हमारे हमेशा काम में आते हैं, हमको ज्यादातर दिखते हैं उन लोगों को। इस बार मैं वोट देने वाली हूँ, जनरली किसी के भी मतलब आवेश में ना आके मैंने सोचा है कि उन्हीं को मैं वोट दूँ जो मेरे को दिखते हैं और जो लगते हैं मेरे को हमको सहयोग कर रहे हैं, तो उन्हीं को मैं वोट देने वाली हूँ अपना।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस कार्यक्रम 2025 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकास कर रहा है। उन्होंने नेताजी की प्रेरणा से देश को एकजुट रखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, नेताजी ने आजाद हिंद फौज के जरिए देश की आजादी का सपना देखा, तब स्वराज के लिए एकजुट होना था, आज विकसित भारत के लिए एकजुट रहना है। दुनिया भारत की ओर देख रही है कि हम 21वीं सदी को भारत की सदी कैसे बनाते हैं। उन्होंने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत और दिल्ली के लाल किले में नेताजी को समर्पित संग्रहालय की स्थापना का जिक्र भी किया। इस वर्ष का पराक्रम दिवस ओडिशा में नेताजी की जन्मभूमि पर भव्य रूप से मनाया जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों की संख्या में पिछले वर्ष नवंबर के दौरान 14,63,000 की वृद्धि हुई है। इनमें 18 से 25 वर्ष तक के नए सदस्यों की संख्या 4,81,000 है। नए सदस्यों में महिलाओं की संख्या लगभग 2,40,000 है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार यह वृद्धि रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और संगठन के आउटरीच कार्यक्रम की सफलता से हुई है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम से लेकर एयरपोर्ट तक प्राधिकरण की ओर से किए जा रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे करने के निर्देश दिए। श्री तिवारी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि देश भर से आने वाले खिलाड़ी उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति से भी परिचित हो सकें। उन्होंने कहा कि पहले भी G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्राधिकरण ने शहर को सजाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेश नेगी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत पिथौरागढ़ जिले के श्री हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज लेलू में आयोजित हो रही बॉक्सिंग प्रतियोगिता की व्यवस्थाओं के लिए आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। आयोजन स्थल में सड़क, बिजली, पानी और पार्किंग सहित सभी मूलभूत व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री नेगी ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए देशभर से पुरुष और महिला बॉक्सर, प्रशिक्षक और सपोर्टिंग स्टाफ के सदस्य 28 जनवरी तक पिथौरागढ़ पहुंच जाएंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के संबंध में प्रमुख सचिव RK सुधांशु ने नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा की। बैठक में खेल स्थलों की तैयारी, सुरक्षा, परिवहन और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान उद्घाटन समारोह को भव्य बनाने के लिए विशेष योजना तैयार की गई। नोडल अधिकारियों ने खेल आयोजन से जुड़ी चुनौतियों को प्रस्तुत किया, जिनका समाधान बैठक के दौरान किया गया। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों समेत खेल निदेशक और देहरादून के जिलाधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश सरकार सामाजिक समरसता और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024 लागू करने जा रही है। यह अधिनियम राज्य के सभी निवासियों पर लागू होगा, चाहे वे राज्य के भीतर रह रहे हों या बाहर। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार यह कानून न केवल विवाह प्रक्रिया को सरल बनाएगा बल्कि इसे अधिक पारदर्शी और जनहितैषी भी बनाएगा। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 342 और 366 के खंड 25 के तहत अधिसूचित, अनुसूचित जनजातियों और संरक्षित प्राधिकार अधिकार प्राप्त व्यक्तियों व समुदायों पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विवाह संबंधी कानूनी प्रक्रियाओं को सरल, सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। यह कानून व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2030 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था का 20% योगदान होगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कल जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय आय में डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान 11.474% था, जो तेजी से बढ़ रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 100 निकायों में मतदान शांतिपूर्ण जारी। दोपहर 12 बजे तक लगभग 25% मतदान दर्ज किया गया। राज्य में मतदान के लिए मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों की संख्या में पिछले साल नवंबर के दौरान 14,63,000 की वृद्धि और MDDA के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर देहरादून में किए जा रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का जायजा लिया। इसके साथ ही समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।